ओम शांति। इस संसार को, इस जगत को कर्म क्षेत्र कहा जाता है, जहां आत्माएं आकर के अपना अपना कर्म करती हैं और उस कर्म के फल स्वरूप उसका फल प्राप्त करती है। जैसा कर्म वैसा फल। इस संसार को युद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है, जहां आत्माएं अपने जीवन में कभी हार कभी जीत का अनुभव करती हैं। इसी प्रकार से इस संसार को रंगभूमि कला क्षेत्र भी कहा जाता है, जहां आत्मा एक एक्टर बनकर के संसार में आती है और अपना अपना अभिनय प्रस्तुत करती है। तो इस संसार में, इस रंग भूमि पर एक श्रेष्ठ एक्ट करने के लिए, एक अच्छा अभिनय करने के लिए उसके जीवन में, उसके अंदर कई सारी योग्यताएं, कई विशेषताएं, कई कलाएं होना आवश्यक है। और इस संसार में जो श्रेष्ठ एक्टर थे सृष्टि के आदिकाल में, उनके जीवन की महिमा गाई जाती है कि वो 16 कला संपूर्ण थे। उनके जीवन में सभी कलाएं थी। मानव जीवन में जो भी कला की जरूरत पड़ती है, उनके जीवन में बहुत सारी कलाएं थीं। तो उन 16 कलाओं में से जो सबसे पहली और मुख्य कला है, वो है भाषण की कला, आर्ट ऑफ स्पीच, बोलने की कला। क्योंकि इस कला के माध्यम से ही हम दूसरों को इम्प्रेस करते हैं। हम दूसरों को अपने बात को दूसरों के सामने रखते हैं और उस बात से उनको सहमत करते हैं। तो जीवन में भाषण की कला ये हर एक को आना चाहिए। यदि इस कला का जीवन में अभाव है, तो हम जो सफलता चाहते हैं वो सफलता को अर्जित नहीं कर सकते। तो भाषण की कला में जो सबसे पहली बात है कि हमको भाषण करने में जो शब्द हैं उसके बारे में पूरा बोध होना चाहिए कि हम कहाँ, किसके सामने क्या बोल रहे हैं और हमें क्या बोलना चाहिए। तो जैसे भाषण की कला में शब्दों का महत्व है, उसी प्रकार से भाषण की कला में हमारी बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए कहा जाता है कि एक सफल वक्ता का जो भाषण है, उस भाषण पर 55% उसकी बॉडी लैंग्वेज का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि स्पीकर जो बोल रहा होता है, वो सारे शब्द तो किसी को याद नहीं रहते हैं, लेकिन उस समय जो उन आँखों से उस वक्ता के हम बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं, वो अवश्य याद रहती है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि जो दुनिया में शास्त्रवादी हैं, जो स्पीकर हैं, उनमें ये कला होती है कि वो सामने जो ऑडियंस है उसको हंसा भी सकते हैं तो रुला भी सकते हैं। उनमें वो कला होती है। तो वो कला उनमें कौन सी होती है? उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उस बॉडी लैंग्वेज से लोग प्रभावित होते हैं, वो उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इमोशनल बन जाते हैं। जैसा कि हम सभी सुनते हैं, सुनते आए भक्ति मार्ग की कई बातें, कई कथाएं, कई कहानियां। जैसे कि बचपन में एक जगह कहीं कोई कथा में एक प्रसंग सुना था, वहां देखा था ध्रुव के ऊपर वो कथा थी कि ध्रुव जो राजा उत्थानपाद का राजकुमार था, उसके दो रानियां थीं। तो जो ध्रुव था, जिस रानी का बेटा था, वो महल से थोड़ा बाहर रहता था और उसको राजकुमार को मालूम था कि जो राजा उत्तानपाद हैं वो हमारे पिता हैं, तो उनके पास रोज खेलने के लिए मिलने के लिए जाता था। एक दिन की घटना घटी, एक दिन की बात, कि जब वो बेटा अपने पिता की गोद में बैठा हुआ था, उस समय जो उसकी सौतेली माँ वहाँ पहुँचती है और देखती है कि हमारा बेटा नीचे खड़ा हुआ है और जो ध्रुव है, जो दूसरी माँ का बेटा है, सौतेली माँ का बेटा है, वो दूसरी वो उसके राजा के गोद में बैठा हुआ है। तो उसको बड़ा क्रोध आया और उसने उस बेटे को गोद से उठा करके नीचे उतार दिया और उसको वार्निंग दी कि आगे से ऐसी गलती नहीं करना, आप जाकर के अपने पिता की गोद में बैठना जो आपका पिता हो। उस समय तक बच्चों को जो आभास था कि जी हमारे असली पिता हैं, जो राजा हैं वो हमारे असली पिता हैं, लेकिन उस समय उसको इस बात का एहसास हुआ कि हमारे असली पिता नहीं है, असली पिता कोई और है। जब वो बेटा अपनी माँ के पास जाता है और पूछता है कि माँ हमारे पिता कौन है, तो माँ ने पूछा कि क्या हुआ बेटा, ऐसा क्यों पूछते हो, तो उसने अपनी सारी घटना माँ को सुनाई। अब माँ उसमें क्या उसको जवाब दे, तो माँ ने पहले बच्चे को बहुत युक्ति से चलाने की कोशिश की, लेकिन बेटा जब चित्त पर अड़ गया कि हमको हमारे असली पिता का ज्ञान होना चाहिए, हमको मालूम करना है कि हमारा असली पिता कौन है, तो जब माँ ने कहा कि आपका असली पिता परमेश्वर है, परमात्मा है, तो उस समय जो सभा में जो कथावाचक था उसने ऐसा इमोशनल भावनाएं पैदा कर दी कि वो स्वयं तो उसमें डूबा हुआ ही था, उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे, साथ साथ जो ऑडियंस थे वो भी उसी भावनाओं में खोए हुए थे। तो कहने का मतलब जो है कि एक कुशल वक्ता बनने के लिए उसकी बॉडी लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वक्ता की जो बॉडी लैंग्वेज होती है उससे ऑडियंस प्रभावित होता है। तो भाषण की कला में जब भी कहीं मंच पर भाषण करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहली बात है कि जैसे ही हम स्टेज पर एंट्री करते हैं, स्टेज पर पधरामणि होती है, तो उस समय हमें देखना है कि हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कैसा है, क्योंकि वो पहला समय होता है जब हम ऑडियंस को अपने पक्ष में करते हैं, ऑडियंस को पर हम अपना प्रभाव डालते हैं। तो उस समय जैसे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होगा, ऑडियंस हमको उसी अनुसार सुनेंगे, उनके मन में हमारे प्रति विश्वास पैदा होगा कि जो हमारे स्पीकर हैं, जो हमें सुनाने आए हैं, जिस बात के लिए हमें बताने आए हैं, हमें अवश्य उनसे वो सब प्राप्ति होगी। तो ऑडियंस को अपने पक्ष में लेने के लिए पहले जो मूल विशेषता है वो होनी चाहिए कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही हाई होना चाहिए। जैसे ही हम स्टेज पर एंट्री करते हैं तो उस समय हमारी चाल, हमारी ढाल कैसे होनी चाहिए, एक शेर की तरह। उस समय जो हमारा बॉडी पोस्चर है बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए, एक नॉर्मल होना चाहिए, बहुत ही अकड़ा हुआ भी नहीं, जो देखने वाले को थोड़ा सोचना पड़े, या बहुत शर्माया हुआ भी नहीं कि सामने वाले मजाक उड़ाएं। अर्थात उसमें हमारा बॉडी का जो पोस्चर है, जैसे कि थोड़ा कंधे टाइट, एक अच्छी नॉर्मल चाल होनी चाहिए, चेहरे पर मुस्कुराहट, खिला हुआ चेहरा, न कि उसमें हमारे चेहरे पर कुछ ऐसे हाव भाव हों जो कि एक ऑडियंस को ये महसूस हो कि ये मना या तो नए नए हैं या फिर इनमें डर है, तो ऐसा हमारे बॉडी पोस्चर से उनको वो अनुभव नहीं होना चाहिए। उनको क्या अनुभव हो, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो उनको दिखाई दे कि जो हमारे वक्ता हैं वो एकदम परफेक्ट हैं, एक कुशल वक्ता हैं, एक प्रखर वक्ता हैं। तो पहली बात है कि स्टेज पर एंट्री करते ही हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही श्रेष्ठ होना चाहिए और वो हमारे चेहरे से, हमारे हाव भाव से उनको अनुभव होना चाहिए, क्योंकि उस समय ऑडियंस हमको सभी देखते हैं, सभी नोट करते हैं कि हमारे प्रवक्ता कौन है, कैसे हैं, उनकी क्या विशेषता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। तो पहली बात है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए, और दूसरी बात है आई कॉन्टैक्ट। जैसे ही हम स्टेज पर पहुंचते हैं तो हमारे आई कॉन्टैक्ट के माध्यम से पब्लिक समझ जाती है कि इनमें क्या योग्यता है, क्या इनमें विशेषता है, इनमें कितनी पावर है। तो स्टेज पर एंट्री करते समय हमारा आई कॉन्टैक्ट सभी के साथ होना चाहिए, लेकिन वो बहुत शॉर्ट पीरियड में, कुछ ही पल में हम सबके साथ आई कॉन्टैक्ट बना लें, ऐसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उस समय ऐसा नहीं कि हम स्टेज पर जा रहे हैं और सामने पब्लिक को देख करके, सामने जो ऑडियंस है उनको देख करके हम अपनी आंखों को झुका लें, या हम उनको देखते हुए भी अनदेखी करें, क्योंकि ऐसा होता है जो स्पीकर नए नए होते हैं या जिनमें स्टेज फियर होता है वो या तो नीचे देखेंगे या फिर कहीं दूर देखेंगे, ऊपर देखेंगे, तो इससे भी हमारे जो नर्वसनेस है वो ऑडियंस को दिखाई देती है। यदि ऑडियंस ऐसा कुछ देखते हैं तो जो हमारा लेक्चर है उसका उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बॉडी लैंग्वेज में ये दूसरी बात है कि हमारा जो आई कॉन्टैक्ट है वो सबके साथ होना चाहिए। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रजापिता ब्रह्मा या शिव बाबा ने ये विशेषता पहले से ही लागू की कि जब भी आप कहीं स्पीच देने जा रहे हैं, किसी भी ऑडियंस के साथ, कहीं पर भी, कभी भी, तो यहाँ का जो नियम है, सिद्धांत है कि पहले आपको 3 मिनट प्रभु की याद में बैठना है। उससे क्या होता है कि जब हम भगवान की याद में बैठते हैं तो परमात्मा से हमें जो पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है, और उस थोड़े से समय में हम अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। भले कैसी भी सभा हो, सभा में कोई भी पर्सनैलिटी वाले ऑडियंस हो, लेकिन उस समय हम अपने आप को एक श्रेष्ठ सम्मान में स्थित कर लेते हैं। तो एक अच्छे वक्ता को जो आई कॉन्टैक्ट है वो बहुत फास्ट, बहुत तीव्र गति से अपना ऑडियंस के साथ स्थापित कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा यदि आई कॉन्टैक्ट सभी के साथ नहीं होगा तो पब्लिक समझ जाती है, ऑडियंस समझ जाते हैं कि स्पीकर शायद नर्वस हैं, हमारी नर्वसनेस उनको फील होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे आई कॉन्टैक्ट से उनमें आत्मविश्वास पैदा हो, हमारे सुनने की उनमें एक इच्छा पैदा हो। साथ साथ भाषण के दौरान, भाषण हम कई प्रकार से करते हैं, जैसे कि स्टेज पर बैठकर के भाषण करते हैं, या स्टेज पर जो माइक स्टैंड होता है वहाँ खड़े होकर के हम स्पीच देते हैं, या फिर स्टेज के बीच में खड़े होकर के स्पीच देते हैं, या कोई ब्लैक बोर्ड के माध्यम से हम दूसरों को अपनी बात रखते हैं, समझाते हैं, तो उस समय भी हमें आई कॉन्टैक्ट को बनाने का पूरा ध्यान रखना है। जैसे कि बैठ करके जब स्पीच दे रहे होते हैं तो उस समय भी ऑडियंस के साथ हमारा आई कॉन्टैक्ट कंटिन्यू कायम रहना चाहिए। यदि सभा बहुत छोटी है तो हम एक एक व्यक्ति के साथ आई कॉन्टैक्ट स्थापित कर सकते हैं, और यदि सभा बहुत बड़ी है, हजारों की सभा है, तो हम उस समय एक एक व्यक्ति के साथ आई कॉन्टैक्ट स्थापित करने के बजाय सभा के बीच में कभी लेफ्ट साइड, कभी राइट साइड, कभी पीछे, कभी आगे, किसी एक व्यक्ति पर हम यदि अपना आई कॉन्टैक्ट स्थापित करते हैं तो उस एरिया में जितने भी ऑडियंस हैं उनको यही फील होगा कि ये हमारे साथ एक अपना आई कॉन्टैक्ट बना रहे हैं, अर्थात उनको अपने प्रति भी रेस्पेक्ट पैदा होगा कि इनके हमारे प्रति कितनी भावना है। और जब भी जब भाषण चालू रहता है उसमें भाषण करने के समय भी बीच बीच में हमारा आई कॉन्टैक्ट सबके साथ बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम भाषण कर रहे हैं और हम केवल किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को देख करके अपना हम स्पीच कंटिन्यू रखे हुए। अगर ऐसा करते हैं तो ऑडियंस समझ जाएंगे कि इनके अंदर नर्वसनेस है, ये नर्वसनेस फील कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। और जब हम बैठ करके भाषण दे रहे हैं उस समय जो कुछ ऐसी एक्टिविटी ऐसी हरकतें होती हैं जो ऑडियंस नोट करते हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि जब हम स्पीच दे रहे होते हैं उस समय पहले हम पालथी मार के बैठे हुए हैं और फिर कुछ समय के बाद पैर खोल करके पैर लंबे करके बैठना, फिर पालथी मार के बैठना। अगर स्पीच देते हुए ऐसा यदि हम कर रहे हैं तो उससे इसका प्रभाव ऑडियंस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही जब भाषण देते समय हमारे जो पैरों की एक्टिविटी है, जैसे कि कई स्पीकर बैठते हैं तो क्या करते हैं, अपने पैरों को बार बार कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्ट उसमें कोई एक्ट करते रहते हैं, जैसे कि अंगुलियों को चलाना या फिर क्या करेंगे बार बार पैरों को आगे पीछे करते हैं ऐसे। और कभी कभी क्या करते हैं, बार बार अपनी अंगुलियों को दबाते हैं या फिर पैरों को रगड़ते हैं, एक पैर को दूसरे पैर से रगड़ते हैं, कभी कभी कंटिन्यू अपना पैर हिलाते रहते हैं। या फिर क्या करते हैं, कभी पैर को एक के ऊपर एक रखेंगे फिर बाद में अदला बदली करते रहते हैं। तो ये जो भी ये पोस्चर है ये नेगेटिव पोस्चर है। एक अच्छे वक्ता को ये सारी हरकतें नहीं करनी होती हैं। तो हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है भाषण देते समय उसमें ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। कई बार वक्ता क्या करते हैं कि अपने बार बार अपने चश्मे को निकालेंगे, उसको साफ करेंगे फिर लगाएंगे, या फिर पेन को निकालेंगे उसका ढक्कन खोलेंगे, उसका कैप निकालेंगे फिर उसको बंद करके अपनी पॉकेट में रखेंगे। तो ये जो भी ये बातें हैं एक अच्छे ऑडियंस की अच्छे वक्ता के लक्षण नहीं है। तो एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए हमें हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो बैठे हुए प्रवक्ता को या वक्ता को क्या करना चाहिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, एक रस, उसके जो बैठने की पोज है वो स्ट्रेट होना चाहिए, जिस पोज में बैठा हुआ है उस पोज में कंटिन्यू बैठना चाहिए। और उसमें जो भाषण करते समय हमारे हाथ का जो एक्टिविटी है उस पर भी बहुत सारा मदार होता है कि हम भाषण के दौरान क्या क्या कर रहे हैं, कैसे हमारे हाथ उसमें काम करते हैं। तो जो हाथों की एक्टिविटी है वो बहुत अधिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं। ऐसा नहीं कि हम भाषण कर रहे हैं और बिल्कुल स्टैच्यू बन करके बैठे हुए हैं, केवल मुख चल रहा है बाकी और बॉडी के कोई भी पार्ट्स नहीं चल रहे। तो ये इससे भी हमारा ऑडियंस जो है वो देखता है कि स्पीकर जो है वो प्रॉपर तैयार नहीं है। तो भाषण करते समय जैसा भाषण वैसे हमारे हाथों की एक्टिविटी भी होनी चाहिए। जैसे कि हम युवाओं के प्रति हमारा भाषण है कि युवाओं में जोश कैसे पैदा करें, तो उसमें हमारे हाथ के जो एक्टिविटी है, जो हाथ का पोज है, पोस्चर है, वो वैसा ही होना चाहिए जो कि सामने बैठे हुए ऑडियंस को भी वो जोश पैदा करे उसी इमोशंस के साथ। हाँ, जैसे बाबा भी दिखाते थे कि ऐसे ऐसे करना होता है, तो ऑडियंस के सामने उसी जैसा भाषण उसी प्रकार से हमारी हाथों की एक्टिविटी भी होना चाहिए, और एक्टिविटी बहुत अधिक भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, जैसा भाषण जैसा सब्जेक्ट जैसा ऑडियंस उसी के अनुकूल होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे बॉडी पोस्चर में या हमारी बॉडी लैंग्वेज में ये हमारे हाथों का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है कि जैसा भाषण वैसे हमारे हाथों की एक्शन होनी चाहिए। अगली बात है कि जब हम ऑडियंस को स्पीच दे रहे हैं उसमें हमारे गर्दन की मूवमेंट भी प्रॉपरली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पर्टिकुलर किसी सामने व्यक्ति को देख करके कंटिन्यू अपना स्पीच दे रहे हैं, क्योंकि सभा में बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, हजारों लोग ऑडियंस होते हैं, तो उस समय हमें सारे ऑडियंस को कवर करना होता है। तो उसके लिए हमारा जो मूवमेंट है, गर्दन की मूवमेंट है, वो कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए। लेकिन मूवमेंट भी ऐसी हो जो सामने वाले को एक्स्ट्रा ना फील होवे, उसको एक्स्ट्रा ना महसूस हो। तो कभी राइट साइड कभी लेफ्ट साइड हमारी जो मूवमेंट है गर्दन की वो आहिस्ते आहिस्ते चलती रहनी चाहिए, क्योंकि कभी लेफ्ट साइड देखना होता है, कभी राइट साइड देखना होता है, कभी सामने कभी पीछे। तो सभी को संबोधित करते हुए अपने स्पीच को आगे बढ़ाते हुए इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये भी हमारे एक बॉडी लैंग्वेज का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तो पहली बात है कि जब हम बैठ करके स्पीच देते हैं उस समय हमें इन बातों पर ध्यान देना है, अपने बॉडी के जो पोस्चर है उसको एक अच्छे वक्ता की तरह उसको मेंटेन रखना है, बार बार उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। दूसरी बात है, जब हम स्टेज पर जो मंच के जो स्टैंड होता है वहां खड़े होकर के हम अपना स्पीच दे रहे होते हैं, उस समय भी हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही सुंदर बहुत ही श्रेष्ठ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम वहां खड़े हैं और बार बार हम माइक को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी इस हाथ से तो कभी उस हाथ से, कभी लेफ्ट हाथ से तो कभी राइट हाथ से। तो ये भी हमारा ध्यान रखने की बहुत बात है, बहुत पॉइंट है कि हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें पॉजिटिव हो। क्या कैसा होना चाहिए कि एक बार जो माइक सेट है उसको बार बार छेड़े नहीं। कई बार वक्ता क्या करते हैं कि वहां जो स्टेज जो बनी हुई है, जो वहां का स्टैंड है, उस स्टैंड को सपोर्ट बना करके अपना स्पीच देते हैं, तो ये भी राइट पोस्चर नहीं है, ये राइट बॉडी लैंग्वेज नहीं है कि हम स्टेज पर सपोर्ट लेकर के अपना स्पीच दे रहे हैं। इससे जो ऑडियंस है वो समझ जाते हैं कि इनके अंदर कुछ ना कुछ भय है, अपने उस भय को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी ऑडियंस ऐसा भी करते हैं कि अपने हाथ को नीचे करके कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं, जैसे कि उस दिन श्याम भाई ने सुनाया था कि कई माताएं जो होती हैं वो अपने पल्लू को अंगुली से उसको घुमाते रहती हैं गोल गोल। तो ऑडियंस के सामने ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑडियंस हमारी इन सभी एक्टिविटीज को देखते हैं। तो भाषण करते समय इन बातों पर हमें ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। और तीसरी बात है, जब हम स्टेज पर बीच में खड़े होकर के स्पीच दे रहे होते हैं तो उस समय जो हमारे खड़े होने का पोस्चर है वो ऐसा होना चाहिए कि हमारा जो दोनों पैर हैं उसकी टांगें लगभग 1 से 1.5 फीट के अंतराल में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दोनों टांगों को दोनों पैरों को सटा करके एक साथ खड़ा करके हम खड़े हुए हैं, ये भी राइट पोस्चर नहीं है, इससे भी ऑडियंस प्रभावित होते हैं। और जब हम स्टेज पर खड़े होकर के स्पीच दे रहे होते हैं उस समय हमें दूसरी बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि हम जो माइक का वायर है उसको बार बार खींचते न रहें, कभी खींचे कभी छोड़ें, कभी उसको इकट्ठा करने का कार्य करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी हमारे बॉडी लैंग्वेज में बाधा है, ये जो सामने जो ऑडियंस है उसको वो सारा नोट करते हैं। और दूसरी बात है, जब हम स्टेज पर खड़े होकर के भाषण दे रहे होते हैं
उस समय केवल एक स्थान पर खड़े होकर के भाषण नहीं देना है, हमें हमारे बार बार मूवमेंट करने है, कुछ कदम राइट साइड में, कुछ कदम लेफ्ट साइड में चल करके अपने स्पीच को आगे बढ़ाना होता है। यदि हम एक जगह खड़े होकर के अपना स्पीच दे रहे हैं तो ये भी हमारी बॉडी लैंग्वेज का राइट प्रॉपर वे नहीं है। साथ साथ जब हम खड़े होकर के स्पीच दे रहे होते हैं उस समय भी पब्लिक के साथ हमारा कंटिन्यू आई कांटेक्ट होना चाहिए, और उस समय जो हमारे हाथों का एक्शन है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं, बहुत अधिक भी नहीं, जैसा स्पीच जैसे ऑडियंस उसी के अनुकूल हमारे हाथों का जो एक्शन है वो होनी चाहिए। हमारे गर्दन की एक्शन भी उसी अनुसार होनी चाहिए, बहुत फास्ट भी नहीं, बहुत स्लो भी नहीं। चौथी बात है, जब हम ब्लैक बोर्ड के माध्यम से किसी को अपना स्पीच, पब्लिक को अपना स्पीच दे रहे होते हैं उसमें खास ध्यान देने की बात है कि जैसे हम सभी यहाँ भी करते हैं, जो हमारा कार्टून मेथड होता है या अन्य जो मेथड है, पिक्चर मेथड है, जब हम दूसरों को समझा रहे होते हैं तो उस समय कंटिन्यू ब्लैक बोर्ड की ओर नहीं देखना होता है, उसकी तरफ एक बार देखा, इशारा किया कि इस टॉपिक पर हम समझा रहे हैं, फिर बाद में कंटिन्यू पब्लिक के जो हमारे ऑडियंस हैं उनके सामने हमारा कन्वर्सेशन होना चाहिए, हमारा आई कॉन्टेक्ट कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसको पढ़ करके कंटिन्यू ऑडियंस को सुनाएं, ये भी हमारा एक जो बॉडी लैंग्वेज है उसका एक नेगेटिव पार्ट है। यदि ऐसा करते हैं तो ऑडियंस आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और एक खास विशेष ध्यान देने की बात है, तो जो स्पीकर है उनको एक विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि जब हम ऑडियंस के सामने अपना स्पीच दे रहे होते हैं तो उस समय कभी भी ऑडियंस की तरफ हमारी सिंगल अंगुली नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि ये एक अहंकार को प्रतीक करता है, अहंकार दिखाता है कि जो ऑडियंस की जो प्रवक्ता है वक्ता है उसमें कितना ईगो है। वो जैसे कि हम लोगों को जो हम ऑडियंस है हमको एक बहुत कम समझते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है कि हम सामने ऑडियंस के प्रति अपना एक अंगुली से कोई बात को इशारा करके उनको बताने की कोशिश करें, तो ये भी हमारे बॉडी लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। एक अच्छे वक्ता को जो उसके कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उन बातों को हमेशा ध्यान रखना है बॉडी लैंग्वेज के रूप में, जैसे कि पहली बात है कि धमाकेदार एंट्री हो, उसकी एंट्री ऐसी हो जो कि सामने बैठे हुए ऑडियंस अगर कोई अनएक्टिव है, सुस्त है, तो उसको भी एकदम अलर्ट हो जाए, ऐसी एंट्री होनी चाहिए, प्रभावशाली एंट्री। और दूसरी बात है कि हमारा जो आई कांटेक्ट है वो सबके साथ होना चाहिए, जो भी ऑडियंस बैठे हुए हैं, क्योंकि सभी हमको सुनने आए हैं तो सब चाहते हैं कि हमारे से उनका संपर्क बना रहे, तो हमारा आई कांटेक्ट सभी के साथ होना चाहिए। तीसरी बात है शारीरिक स्थिरता हो, शरीर में एक्स्ट्रा हलचल नहीं होनी चाहिए, शारीरिक स्थिरता होनी चाहिए, हलचल ना हो। चौथी बात है स्टेज फियर ना हो, क्योंकि यदि स्टेज फियर होगा तो सामने जो ऑडियंस हैं वो भी उसको कैच करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्माइल, फेस पर स्माइल होनी चाहिए, मंद मंद स्माइल। अगली बात है हमारे हाथों के इशारे भाषण के अनुकूल होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है गर्दन की मूवमेंट सब तरफ हो, सामने स्टैच्यू के रूप में बैठ करके भाषण नहीं करना है, हमारे मूवमेंट जो भी ऑडियंस से हर एक की तरफ होनी चाहिए। अगले पॉइंट है किसी एक व्यक्ति की तरफ नजर ना हो। अगली पॉइंट माइक स्टैंड वायर आदि के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, अपने कपड़ों में अंगुली नहीं घुमानी चाहिए, जैसे कि बताया, या कई बार कई कुमारियां होती हैं जो भाषण दे रही होती हैं, वो बार बार अपने स्कॉर्फ जो दुपट्टा होता है उसको उसमें गांठ बांधेंगे खोलेंगी, गांठ बांधेंगे खोलेंगी, तो ये भी एक अच्छे वक्ता के लक्षण नहीं है। तो ऐसे बार बार नहीं करना चाहिए। अगली पॉइंट है, खड़े होकर भाषण देने के नियम के अनुसार ही एक्टिविटी हो। अगली पॉइंट है, ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझाते समय केवल ब्लैक बोर्ड की तरफ नजर न हो। और लास्ट पॉइंट है कि पब्लिक के जो हमारे ऑडियंस है उनकी तरफ उंगली नहीं उठानी चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जो हमें, जो हम एक अच्छे प्रवक्ता के रूप में यदि हम कहीं अपना स्पीच देने जाते हैं तो इन बातों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके माध्यम से ही हम अपना स्पीच ऑडियंस के सामने रखें और एक अच्छे प्रवक्ता की छवि को बनाए रखें। ओम शांति।